मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 9 मई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सतीश कुमार जबलपुर मध्य प्रदेश से, हिमांशु वाड़ी अब अलीराजपुर मध्य प्रदेश से ही, प्रीति सोनीपत हरियाणा से, अंकिता आप भी सोनीपत हरियाणा से हैं, और अगली मित्र हैं मोनिका आप भी सोनीपत हरियाणा से हैं। यानी कि ये 3 फ्रेंड्स सोनीपत हरियाणा से हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों हो सकता है कि आपस में बहुत अच्छी न केवल परिचित ही हों बल्कि बहुत अच्छी सहेली हों, और तीनों ने ही एक साथ भोपाल के एकेडमी को ज्वाइन करने का मन बनाया हो। और निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो यह इनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अपना ग्रुप बना करके एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकती हैं। और छठवें मित्र हैं हमारे पवनेश कुमार तिवारी जो बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। तो सतीश, हिमांशु, प्रीति, अंकिता, मोनिका और पवनेश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 दिनों के गैप के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। हालांकि सैटरडे को आपको काफी कुछ होमवर्क जैसा सौंपा जाता है, तो इसलिए मैं ये तो नहीं मान सकता कि सैटरडे को आप इत्मीनान से रहते होंगे, लेकिन डेफिनेटली संडे तो शायद आप लोगों का इत्मीनान से बीतता ही होगा। और मुझे यह समझने में बहुत दिक्कत नहीं हो रही है कि आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने संडे के दिन के कुछ घंटे शायद ट्रैफिक के साथ भी बिताए हों। तो मित्रों, अब 6 दिनों के लिए आप पूरे जोश खरोश के साथ तैयार हो जाइए, अपने दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव इनपुट भेजिए और कहिए कि अब हो गया, अब किसी तरह की तुम्हारी अलाली नहीं चलेगी, तुम्हारे षड्यंत्र को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। यदि तुमको मुझसे कुछ राहत चाहिए ही तो तुम मुझसे संडे को बात करना, शायद संडे को मेरी अदालत में तुम्हारे इस चाहत की थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाए। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुनवाई भी बहुत कुछ तुम्हारे अपने ही पक्ष में होगी। इसीलिए 6 दिन तक तुम मेरा साथ दो मेरे मन, और 7वें दिन निश्चित रूप से मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इस तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हुए हम अपनी जिंदगी का साथ निभाएं। तो मित्रों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी सूचना है कि मेरे पास कुछ मेल आए थे। मैंने एक किताब के बारे में आप लोगों से बात की थी, इंट्यूशन पावर, जो यहां बैंतियन बुक्स भोपाल से ही छपी है। और मैंने कहा था कि ये किताब आप लोगों के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए जनरल रीडिंग की किताब है, बहुत उपयोगी हो सकती है। और वैसे भी जो आपके जनरल स्टडीज का 4th पेपर है उसमें इंट्यूशन पावर और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज और चेतना का द्वंद आदि सब कहते हैं, वो सिलेबस में है भी और उस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि ये बहुत अच्छी किताब है, इसे आप लें। इसके टाइटल से कुछ स्टूडेंट के मन में ये भ्रम हुआ कि यह हिंदी में किताब है या अंग्रेजी में है, और नाम से स्वाभाविक रूप से यह भ्रम होता ही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह हिंदी में लिखी गई किताब है। नाम जरूर इसका इंट्यूशन पावर रखा गया है, क्योंकि हिंदी अगर अंग्रेजी इसका हिंदी अनुवाद करके कोई नाम रखा जाता तो शायद वो उतना कम्युनिकेटिव नहीं होता। और इस किताब को लिखने वाले वही हैं जिन्होंने स्टूडेंट और शिष्टाचार किताब लिखी है। तो ये सूचना आप लोगों के लिए है मित्रों, और आप चाहें तो यह किताब बुक स्टॉल पर भी अवेलेबल है, जहां भी बैंतियन बुक्स की किताबें मिलती हैं, नहीं तो amazon.com पर तो ये किताब मिलती है। मैं राइटर का नाम भी आप लोगों को बता दूं, इसके राइटर हैं गौतम मसानिया, बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये किताब लिखी है। दोस्तों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। मित्रों, मैंने पिछले वीक फ्राइडे को आप लोगों से कहा था कि अब आप लोग लाइफ मैनेजमेंट के लिए अपने विषय भेजिए कि किन विषयों पर आप बात करना पसंद करेंगे, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट है। और सच तो यह है दोस्तों कि दो साल से अधिक हो गए और इस डेली ऑडियो को चलते हुए और शुरू से ही लाइफ मैनेजमेंट वाला थोड़ा सा कंटेंट हम लोगों ने रखा है। और इस बीच में दो साल मतलब लगभग छः साढ़े छः सौ दिन, क्योंकि बीच में कुछ दिनों तक ऑडियो आता भी नहीं है, तो ढेर सारे इश्यूज पर हम लोगों ने बात की है। और चूंकि नए नए स्टूडेंट्स इसमें जुड़ते चले जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो नए जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो उन्हीं विषयों पर बात तो हो चुकी है, लेकिन वो उन्होंने उसे सुना नहीं है। दूसरी बात एक और भी है मित्रों कि जब हम किसी भी इशू पर, चाहे हमने मान लीजिए कि दो साल पहले ही बात क्यों न की हो, लेकिन जब हम आज बात करते हैं तो आज उसके संदर्भ बदल चुके हैं। सच पूछिए तो सिस्टम भी बदल चुके हैं, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी में आप देखिए कि इतने फास्ट तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं, इतनी तेज रफ्तार से परिवर्तन आ रहे हैं कि हमारी चेतना उसको संभालने की स्थिति में नहीं है। हम किसी भी चीज की गारंटी साल भर की भी नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी, चाहे टॉपिक पुराना ही क्यों ना हो, उस पर बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें आती भी हैं। इसलिए आप लोगों से टॉपिक बिल्कुल इनवाइटेड है, आमंत्रित हैं, आप लोग भेजें, मैं अब उन्हीं में से विषय लेकर के आप लोगों से बातें करूंगा। मेरे पास जो मेल आए हैं उनमें से मैंने कुछ विषय छांटे हैं और उसमें से मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच पूछे तो बहुत ही मजेदार विषय को लेकर के आप लोगों से बात करने वाला हूं मित्रों, और यह विषय है प्रेम के ऊपर। निश्चित रूप से आप लोग इस पर बहुत सुनना पसंद करते हैं, और इससे पहले तो मैंने इस पर बहुत विस्तार के साथ बात की है, और सच पूछे कि इतने विस्तार के साथ बात की है कि बात करते करते मुझे लगा कि इस पर एक किताब ही लिख देनी चाहिए। और चूंकि मेरे पास फोन पर इतनी ज्यादा इस तरह की समस्याएं आने लगी थी, तो मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है मित्रों। उसका नाम है स्टूडेंट और प्रेम की समझ। तो सबसे पहले तो मैं फिर से आपको इस किताब को रिकमेंड करना चाहूंगा कि प्लीज गो थ्रू दिस बुक, प्लीज इस किताब को पढ़ें। शर्माएं ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत से स्टूडेंट इस किताब को पढ़ने में शर्म महसूस करते हैं, खरीदने में संकोच महसूस करते हैं कि लोग क्या समझेंगे, इसमें प्रेम कैसे किया जाता है ये नहीं समझाया गया है, कि प्रेम करने के तरीके हम बता रहे हैं। नॉट एट ऑल दोस्तों, ये एक समझ पैदा करने वाली किताब है कि आप इसे समझिए कि इनफैक्ट ये है क्या। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं में से मैं आज लेकर के कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं, और हो सकता है कि इससे आप लोगों की समस्याओं को समाधान करने में कुछ मदद मिल सके। मित्रों, प्रेम का जो सबसे बड़ा संकट है आप समझते हैं क्या है? मुझे जो महसूस होता है और वो ये है कि इसे हम कोई बहुत ही अद्भुत और कोई बड़ी रहस्यमयी और बड़े ईश्वर का वरदान या पता नहीं क्या चीज मान लेते हैं। पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे कि ये भावना है या पूरी तरह से आत्मा है और पता नहीं अध्यात्म है और क्या क्या चीजें हम मान लेते हैं। नो डाउट मित्रों, ये सब चीजें हैं। अभी जो आप फिल्मों में देख रहे हैं, कितने सूफियाना गानों की एक बाढ़ सी आई हुई। कल मैंने भी ट्रैफिक फिल्म देखी, इसलिए मुझे याद आ गया कि शायद आप लोगों ने भी ट्रैफिक फिल्म देखी होगी, उसमें भी एक सूफियाना गीत है। सूफी के केंद्र में प्रेम ही है, वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो ईश्वरीय प्रेम है, वो एक अलग स्तर का प्रेम है जो बिल्कुल टॉप पर चलता है। लेकिन हम सब जो अपने जीवन के एक पर्टिकुलर एज में, जिस एज में आप सब हैं, जो महसूस करते हैं वो केवल बीज रूप में ही मौजूद है। प्रेम का वो जो आध्यात्मिक रूप है, जो टॉप लेवल का है, वो केवल बीज रूप में है। उसे आप उसी का पर्याय मानने की भूल मत कीजिए कि अगर मुझे प्रेम महसूस हो रहा है तो मैं किसी आध्यात्म के स्तर पर पहुंच गया हूं, कुछ बहुत बड़ा बन गया हूं और मुझे इसके लिए अपने को कुर्बान कर देना चाहिए, क्योंकि यह कुर्बानी ही मुझे ईश्वर से मिला देगा या फलाना कर देगा। और यदि यह गायब हो गया तो मेरे जीवन से तो प्रेम गायब हो जाएगा, मेरे जीवन से तो अध्यात्म गायब हो जाएगा। यह सब सोचना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है मित्रों। मैं जानबूझकर माफी मांगते हुए यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। मूर्खता मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां भावना का आवेश ज्यादा है और लॉजिक है ही नहीं। हम इस उम्र में या किसी भी उम्र में जिस प्रेम को महसूस करते हैं दोस्तों, वो भले ही भावना प्रधान है, उसमें भावना का महत्व है या सबसे ज्यादा तत्व भी है, लेकिन याद रखिए कि वह भी एक यथार्थ है। भावना अपने आप में झूठा नहीं है, भावना अपने आप में कोई रहस्य नहीं है, भावना भी अपने आप में एक यथार्थ है। हवा चलती हुई नहीं दिख रही है तो क्या हवा अदृश्य है? वह भी एक यथार्थ है। जिन चीजों को भी हम महसूस कर रहे हैं वो सब की सब चीजें यथार्थ है, भले ही वो हमारी समझ में नहीं आ रही है, भले ही वो हमारी पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन यथार्थ तो है क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, आप इस प्रेम को भी उसी तरीके से मानकर चलें जैसे दूसरी भावनाएं हमारे अंदर उठती हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी अच्छा लगता है, कभी हंसी आती है, कभी डिप्रेशन सा महसूस होने लगता है, कभी डर लगता है, उसी तरह से प्रेम भी उत्पन्न होता है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी चीज हो गई? दूसरी बात जो है मित्रों, जो शायद सबसे ज्यादा व्यावहारिक है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, वह यह है कि आप जैसे ही इसे यथार्थ मानेंगे और इसमें से आदर्श को हटा देंगे, वैसे ही आपका इसके साथ जो व्यवहार होगा वो बदल जाएगा। व्यवहार इस रूप में बदल जाएगा कि हम कहते हैं कि प्रेम प्रतिदान मांग देता है, मतलब वो केवल समर्पण है, वो केवल देना देना जानता है, उसमें से कोई अपेक्षाएं नहीं होती, आप तो केवल प्रेम करते रहिए, सामने वाला करे ना करे उसकी बिल्कुल परवाह मत करते रहिए, बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए, वो आपका प्रेम है और आप उसे संभाल करके रखिए, प्रेम तो केवल देना है, लेना जानता ही नहीं है, इस तरह की ढेर सारी बातें कही जाती है। ये जितनी भी बातें कही जाती हैं वो गलत नहीं है, वो सच है, लेकिन मित्रों इसके लिए एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए, एक एज का, उम्र का, अनुभव का एक स्तर चाहिए। स्पेशली हम अपने जीवन के शुरुआत के दिनों में जिस प्रेम को महसूस करते हैं वो ज्यादातर जो प्रेम होता है मूलतः सच पूछे तो वो बायोलॉजिकल अधिक होता है, उसमें साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं होती है। वो हार्मोन्स की वजह में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से वो भावनाएं हमारे दिमाग में उठती हैं, और इससे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। हम अपने इस बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को, बायोलॉजिकल इमोशंस को, पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा 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 नाम दे देते हैं। ये केवल इस बात का इंडिकेशन है कि प्रेम नामक तत्व हमारे अंदर बीज रूप में मौजूद है, इसे हमें संभाल कर रखना है। ये जो सीड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सीड्स हैं और हमें अपने जीवन का इसे आधार बनाना है, जीवन को इसमें समेट देना नहीं है, ये जीवन का सिर्फ एक आधार है। इसीलिए जब भौतिक स्तर पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंटरेक्शन तो भौतिक स्तर पर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। मान लीजिए कि मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं, मेरी भी अपेक्षा होगी कि वह भी मुझसे प्रेम करे, लेकिन यदि यह भौतिक जगत का प्रेम है तो यह मामला बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। अगर ये सारी चीजें एक तरफा है तो आप देखेंगे कि मेरा ही जो प्रेम है उसके प्रति संदेह में बदलेगा, फ्रस्ट्रेशन में बदलेगा, गुस्से में बदलेगा, हो सकता है कि डिप्रेशन में बदल जाए, और बहुत लोगों के तो डिप्रेशन में इस लेवल तक बदल जाता है तो वो अपने आप को खत्म ही करने को तैयार हो जाते हैं, या क्रोध में बदल जाता है कि सामने वाले को ही खत्म कर देते हैं, अच्छा तुम मुझसे प्रेम नहीं कर रहे तो लो। व्हाट इज दिस? ये उत्तेजना है, प्रेम की भी उत्तेजना है, क्रोध की भी उत्तेजना है और डिप्रेशन की भी उत्तेजना है। ये इनके एक्सट्रीम्स हैं, सबसे चरम है इनके, जो आपको खत्म कर दे रहा, ये प्रेम है ही नहीं, ये प्रेम है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो भौतिक जगत में होता यह है कि जब हमें उसका प्रतिदान नहीं मिलता तो हम अपने को संभालने की कोशिश करते हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि या तो वो प्रेम मेरे लायक नहीं है या मेरा प्रेम उसके लायक नहीं है, हम उसको रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम कोई मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जिसको प्रेम कर रहा हूं उसको भी मुझे प्रेम करना ही चाहिए, ये मेरा कोई राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ना कोई गुलामी है कि नहीं ये तुम, मैं चूंकि तुम्हें चाह रहा हूं तो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता का मैं अपहरण कर रहा हूं, तुम दूसरों को प्रेम करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। मित्रों ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं, इन्हें इसे व्यावहारिक स्तर पर देखने की कोशिश कीजिए। और मैं ये बात खासकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब अभी अपनी लाइफ के बिल्कुल फंडामेंटल स्टेज पर हैं, फाउंडेशन के स्टेज पर हैं, बिल्कुल आपको अभी नींव रखनी है अपनी जिंदगी की, और ये नींव दोस्तों बहुत मजबूत रखी जानी चाहिए, बहुत सोच समझकर और ठोस तरीके से रखी जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेम के अगर इस तरीके के मैं बातें करूं जो भटकाता है, जो कमजोर करता है, जो प्रेम को ठीक ढंग से समझने नहीं देता, जो रात भर नींद नहीं आने देता, भूख गायब कर देता है, किसी की जिंदगी भर इंतजारी कराता रहता है, इनफैक्ट पहली बात तो ये प्रेमी नहीं है, और दूसरा यदि है भी तो हमारे इस फाउंडेशन को बहुत ही पिलपिला बना देता है, खत्म कर देता है, दलदल में कन्वर्ट कर देता है, फिर आगे जिंदगी में रोने करने और बिसरने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता मित्रों। इसीलिए यह बहुत बड़ी पूंजी तो है, लेकिन इसे अगर संभाल करके नहीं रखा जाए तो यह सच पूछे तो हमें कंगाल भी कर देता है। इसीलिए अपेक्षा उपेक्षा जैसी कोई चीज प्रेम के अंदर तभी तक हम सोचते हैं जब तक इसे हम भावनात्मक रूप में लेते हैं। जैसे ही हम यथार्थ रूप में लेते हैं, आप देखेंगे कि हमारे सोचने समझने का नजरिया बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, और हमें इसे यथार्थ रूप में लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए अगर भावातरेक भी हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा हम एक्सट्रीम इमोशनल हो गए हैं, ठीक है, थोड़ी देर में कंट्रोल कर लीजिए, फिर से अपने दिमाग में अच्छे अच्छे लॉजिक डालने शुरू कीजिए, और फिर आपके दिमाग में आप देखिए कि कैसे एक स्थिरता आ जाएगी। इस तरह की समझ कैसे पैदा हो सकती है मित्रों, वो मैंने किताब में बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने उसे नाम भी दिया है प्रेम की समझ। प्रेम की कला नाम नहीं दिया है, प्रेम की समझ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लव। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, कल के AIR न्यूज में डायरेक्ट तो कुछ खबरें ऐसी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट काफी चीजें हमारे लायक हैं, उसमें से दो तीन इश्यूज पर हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। मित्रों, एक तो जो खबर थी उसमें आपने ये सुना कि एक खबर है कि भारत में लगभग 70,000 जजेस होने चाहिए, 70,000 जजेस की कमी, 70,000, और हैं कितने, 18,000। आप कल्पना करके देखिए, 70,000 की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास हैं 18,000। यहां तक फिर कहा जा रहा है। अब आप देखिए कि दूसरी मजेदार चीज देखिए कि एक जस्टिस न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि न्याय पाना हम सबका मूल अधिकार है। मैं सिविल सर्विस के पॉइंट से ले जा रहा हूं मित्रों कि कैसे चीजें बनाई जाती हैं सिविल सर्विस के लिए, कैसे हमें अपनी तैयारी को अलग अलग डाइमेंशंस देना होता है, कैसे उसके डेप्थ में पहुंचना होता है, और सच पूछिए तो जब तक हम उसे कोई नया डाइमेंशन नहीं देंगे या कह लीजिए दिशा नहीं देंगे, तब तक फिर हमारा दिमाग उस दिशा की ओर जाएगा नहीं। तो आज कल के न्यूज में जो एक नई दिशा जो न्याय व्यवस्था की तरफ से आई है सोचने के लिए, वो है मूल अधिकार। न्यायमूर्ति ये कह रहे हैं कि न्याय पाना मूल अधिकार है। नो डाउट न्याय पाना मूल अधिकार है, अगर इसको हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से ले लें, बहुत ही यथार्थवादी तरीके से ले लें, या कह लीजिए संवैधानिक तरीके से ले लें, तो नो डाउट कोर्ट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। जो न्यायालय के जो दरवाजे हैं तहसील स्तर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं, वहां किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, पहली बात। दूसरा, न्याय के समक्ष सभी समान हैं। ये सारी चीजें हैं, तो पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था है। मूल अधिकार को पूरा करने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था चाहिए, जो प्रशासकीय व्यवस्था चाहिए, वो सारी चीजें मौजूद हैं, राइट। लेकिन अब सवाल यह उठता है मित्रों कि क्या यह मूल अधिकार फुलफिल हो पा रहा है। मूल अधिकार का मतलब क्या केवल न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले होना ही है, या वास्तव में उस तरीके से न्याय प्राप्त हो जाना है। देखिए, दो थोड़ी सी अलग स्थितियां हैं, इस पर आपको विचार करना होगा। पहली बात, मूल अधिकार है, न्यायालय खुले हैं, आप जाइए, ये मूल अधिकार है, तो हमारी रक्षा हो रही है मूल अधिकार। लेकिन जो हमें मिल रहा है, न्याय के लिए जाना मूल अधिकार नहीं है, न्याय पाना मूल अधिकार है। तो क्या जाने से लेकर पाने तक की पूरी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो फुलफिल हो रही है। बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था या भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी एक तबका है जो ये प्रश्न उठाता है कि भारत भले ही समाजवादी समाज की बात करता है, लेकिन मूलतः है यह पूंजीवादी समाज। भले ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, लेकिन पूरी तरह से जो हमारा समाज है वो पूंजीवादी व्यवस्था के हाथों में है, और लिबरलाइजेशन के बाद तो वह और चलता चला जा रहा है। तो अब आप देखें कि मूल अधिकार कौन रोक रहा है, न्याय को पाने में कौन रोक रहा है। सबसे पहली बात कि 18,000 जजेस हैं, 70,000 की जरूरत है, 52,000 जजेस की कमी है, तो इस ये कमी क्यों है, रोका क्यों जा रहा है? और जबकि ये जो स्तंभ है हमारे देश का तीसरा मूल स्तंभ है, आपको मालूम है, अगर आप कंपेयर कीजिए, मैं केवल एक सोचने की बात दे रहा हूं, आप इन्हें मेरे विचार मत मानिए, ये मैं केवल आपको फूड फॉर थॉट्स प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, कि कैसे हम विश्लेषण करते हैं जब हम किसी चीज पर सोचने लगते हैं तो कैसे लगातार तत्व तो हमारे दिमाग में निकलते चले जाते हैं। जजेस की पोस्ट खाली है, क्या जब किसी एमपी की पोस्ट खाली होती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट खाली होती, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, या कलेक्टर की पोस्ट खाली होती या एसपी की पोस्ट खाली होती है किसी भी वजह से, या ट्रांसफर किया जाता है, तो क्या वो पोस्ट्स खाली रहती हैं? मैंने दोनों बात कही, लेजिस्लेचर का मतलब है विधानसभा और लोकसभा। मालूम है कि 6 महीने के अंदर यदि कोई रिजाइन कर देते हैं या किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 6 महीने के अंदर ये पोस्ट भर दिए जाते हैं। ये लेजिस्लेचर की स्थिति है जो हमारा सबसे प्रमुख स्तंभ है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका में भी कुछ पद खाली रह जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे जैसे भी हो, वहां आप कभी भी उन्हें खाली नहीं पाएंगे और होना भी नहीं चाहिए, यह बहुत जरूरी है, वहां पे लोग होते हैं। अब है जुडिशरी। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब सुप्रीम कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट बंद है, सेशन कोर्ट बंद है, वहां कुछ लोग होते हैं, लेकिन जो पूरी की पूरी कैपेसिटी का 1/4 काम कर रहा है, अगर हम मान करके चले 72,000 में सिर्फ 18,000, तो 1/4 मान लीजिए कि 25% की क्षमता के साथ हमारी जुडिशरी, जो तीसरी स्तंभ है लोकतंत्र की, हमारे संविधान की, वो काम कर रही है, तो भरा क्यों नहीं जा रहा है? क्या सच में पैसों की कमी है? और अगर पैसों की कमी है तो दुनिया भर के पैसे दूसरे लग रहे हैं, लेकिन जुडिशरी के लिए पैसा, जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है, आप स्तंभ के लिए पैसों की कमी की बात कैसे कर सकते हैं? तो मित्रों, इसीलिए फिर होता है कि फिर मूल अधिकार की रक्षा कैसे हो रही है? दूसरे तत्व आप देखिए, न्याय कितनी महंगी है, पहली बात, आम आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता, वहां मूल अधिकार बाधित होता है। इसीलिए जब शिक्षा महंगी होने लगी तो उसको मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। आपने देखा ना कि जब अनाज महंगा होने लगा उसको भी फिर मूल अधिकार में शामिल किया, मूल उस तरीके से तो नहीं, लेकिन कर दिया गया कि खाद्य अधिनियम लाया जा रहा है गरीबों के लिए, लाया जा रहा है खाद्य अधिनियम की नहीं, भोजन भी आपका मूल अधिकार है, क्योंकि जीने का अधिकार बिना भोजन के अर्थहीन है। जब हम भोजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आपके जीने के अधिकार का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जा रहा है, हमको आपको भोजन कराएंगे। शिक्षा महंगी होने लगी, इस पर भी हुई मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, उनका प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है, और राज्य इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कभी न्याय के लिए भी ये चीजें आएंगी? नो डाउट कि दूसरी व्यवस्था की गई है कि जो गरीब है उसके लिए सरकारी वकील प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, अगर न्याय व्यवस्था में डिले हो रहा है तो फिर क्या आप इसे मूल अधिकार से जोड़ सकते हैं कि यह भी न्याय न मिलने के बराबर है? फिर अपील, अपील पर अपील, अपील पर अपील, अपील पर अपील, और स्वाभाविक है कि जैसे जैसे आप अपील के लिए ऊपर चले जाते हैं, एक तो आपके रिच दूर होती चली जाती है। मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में मैं हार जाता हूं तो वहां तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, अपने गांव से चल करके आ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे हाई कोर्ट जाना हुआ तो मैं जबलपुर कैसे जाऊंगा? और जबलपुर भी चला गया और वहां भी हार गया तो अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो वहां मैं कैसे जाऊंगा? मेरे बस की बात नहीं है, एक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है और दूसरे ड्यूरेबिलिटी नहीं है, मैं उतना पैसा खर्च कर ही नहीं सकता। तो ये भी मूल अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न है। तो दोस्तों, ये जो मूल अधिकार शब्द है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से यदि सिविल सर्विस में कोई इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो बजाय इसके कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करके और 200 शब्द पूरे कर रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके डायमेंशंस बनाइए, अलग अलग डायमेंशंस में जाइए और उन डायमेंशंस को जो केंद्रीय बात जो कही गई है उससे जोड़कर देखिए। यहां न्याय व्यवस्था के प्रति प्रणाली पर बात नहीं कही गई है, न्याय व्यवस्था के फेलियर पर भी बात नहीं की गई है। याद रखिए, भारत की न्याय व्यवस्था में क्या कमियां हैं उसकी भी बात नहीं कही गई है, भारत की न्याय व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए उसकी भी बात नहीं की गई है, यहां बात सिर्फ मूल अधिकार और न्याय व्यवस्था की बात कही गई है। यहां आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। तो जब भी आप न्याय व्यवस्था से जुड़ा कोई भी कंटेंट लेंगे तो उस कंटेंट का संबंध इस फंडामेंटल राइट से होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो उत्तर है वो सही तरीके से बन पाएगा। अदरवाइज फिर जरा भी अगर आपने ढिलाई दी तो आप देखेंगे कि आपकी दिशा भटक जाएगी, ध्यान भंग हो जाएगा और बात तो करना चाह रहे थे आप मूल अधिकार और न्याय व्यवस्था पर, लेकिन वो पता चला कि वो चला गया पूरे की पूरी न्याय व्यवस्था पर, मूल अधिकार वहां से गायब हो गया। ये सतर्कता आपको रखनी होगी। तो मित्रों, जानबूझकर इस शब्द को लेकर के मैंने थोड़ी सी इसकी विस्तार से व्याख्या की है, और मैं चाहूंगा कि खासकर ये जो मैंने व्याख्या की है, ये केवल एक बार सुनने से ही आपके दिमाग में रच बस नहीं जाएगा। इसको जब आप बार बार सुनेंगे, सुनेंगे ही नहीं बल्कि बार बार सोचेंगे, सोचेंगे ही नहीं बल्कि इसी पैटर्न पर कोई दूसरा प्रश्न ला करके उस पर विचार करके इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक सच पूछे तो ये चीज आपकी पकड़ में आएगी ही नहीं। और सिविल सर्विस के अब उत्तर लिखने के लिए आपको इस तरह की पकड़ बनानी ही पड़ेगी। फिर चाहे आप इससे बना लें या और भी दूसरे बहुत से उपाय हैं, उन सबसे बना लें, लेकिन ये आपके लिए एक तरीके से अनिवार्य है। मित्रों, जो दूसरी बात थी वो भ्रष्टाचार को लेकर थी। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण जो विकास का जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंचेगा। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक ये जो विकास के जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो गरीबों तक नहीं पहुंचेंगे। राइट, ये एक लाइन है, एक पंक्ति है, एक स्टेटमेंट है, और इसी के आगे एक प्रश्न और जोड़ दीजिए कि इसे सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, प्राइम मिनिस्टर के इस वक्तव्य को सिद्ध कीजिए। यह तो मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि आप इस पर विचार कीजिए। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, कि जो करप्शन है, एक करप्शन आपके सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो अगर आप फर्स्ट पेज को थोड़ा, फर्स्ट पेपर को, जनरल स्टडीज मेंस की बात मैं कर रहा हूं, तो अगर उसके फर्स्ट पेपर को छोड़ दें तो रिमेनिंग जो तीन पेपर्स हैं उनमें से सबको सूट करता है, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। और केवल ये अभी की बात नहीं है, जैसे करप्शन है, गरीबी है, ये सब भारत के इतने जबरदस्त इश्यू हैं कि मुझे लगता है कि, मुझे नहीं मालूम है कि सन 50 के बावन तिरपन के आसपास जो आईएएस के पेपर्स आते थे उसमें ये इश्यू होते थे कि नहीं होते थे, लेकिन गरीबी का तो इश्यू पक्का होगा। लेकिन मुझे मालूम है कि सन 70 के बाद से जो क्वेश्चंस पेपर्स आ रहे हैं उसमें ये दो तीन इश्यू ऐसे हैं जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों के समय पूछे जा रहे थे, आपके समय में भी पूछे जाएंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली पीढ़ी के में ये प्रश्न एग्जिस्ट ही न करें, खत्म हो चुके हों। करप्शन एक ऐसा इश्यू है मित्रों। अभी मैंने कहा कि ये तीनों पेपर्स में संभावना रहती है, क्यों? क्योंकि जो करप्शन है, करप्शन पर देखिए आपको थोड़ा सा फिर नए तरीके से सोचना होगा। अब करप्शन का वही रूप नहीं रह गया है जो पहले था, या जो आपको पुरानी किताबों में पढ़ने को मिलेंगे। अब आपको एक नए डायमेंशंस के साथ करप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, और आप देख रहे होंगे कि करप्शंस पर जब भी कुछ नई चीज मिलती है मैं लगातार आप लोगों को उसके क्लिपिंग्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, इनपुट देता चला जाता हूं, ताकि एक नई चीज, नई बातें आपके दिमाग में उभरे। चीजें बदलती भी हैं, जैसे एक पॉलिटिकल करप्शन, राइट? पॉलिटिकल करप्शन के केंद्र में चुनावी फंड है जिस पर लगातार आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले दो सालों से, जो न्यूज में भी था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और यह कम बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंटर लेवल पर पॉलिटिकल करप्शन की कोई चर्चा नहीं हो रही है, यानी कि चर्चा दबा दी गई है, कोई करप्शन ही सामने नहीं आया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। नो डाउट आप कह सकते हैं कि लेकिन राज्यों में तो नहीं सुन, राज्यों में तो सुनने को मिल रहा है, कहीं कर्नाटक में मिल जाता है, कहीं पंजाब में मिल जाता है, कहीं हरियाणा में मिल, पता नहीं कहां, जो भी राज्य हैं वहां मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, व्यापम मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रहे हैं, फलाना फलाना, ये सब चीजें आप सुन रहे हैं। लेकिन मित्रों, जो जहर इतना इतना डीप रूटेड हो वो एक दिन में खत्म नहीं हो सकता है। भारत के करप्शन की जो सबसे जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो ये है कि वो टॉप लेवल से परकोलेट होते हुए रिश्ते 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 वो लोएस्ट लेवल तक आ गया है। तो अगर आपको रोकना है तो उपाय क्या हो सकता है? बट नेचुरल कि अगर वो टॉप लेवल पर रुकता है तो उसका प्रभाव रिश्ते 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 धीरे धीरे नीचे के लेवल पर आएगा, उसमें कुछ वक्त लगेगा। ये मैं आपको केवल एक जो नई चीज जो दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, नो डाउट कि इकोनॉमिक करप्शन है, इकोनॉमिक करप्शन, आर्थिक क्षेत्र में करप्शन है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आर्थिक क्षेत्र के करप्शंस पर प्रतिबंध लग रहे हैं। आरटीआई, आपके वो ट्रांसपेरेंसी आ गया है, नेट के जरिए निविदाएं भरी जा रही हैं, ओपन ऑक्शंस हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शून्य हो गया है, यहां पर आपको थोड़ा सा तटस्थ होकर सोचना पड़ेगा। करप्शन की खबरें अभी भी आप अखबारों में पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन एक तरफा मत मान करके चलिए कि कुछ नहीं हो रहा है, काफी कुछ प्रतिबंध टेक्नोलॉजी ने करप्शंस पे लगाया है। और तीसरा नो डाउट कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस के बारे में हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने एक साल पहले बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि ये सर्विस प्रोवाइड न होने के कारण है। यदि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइड करने लगे तो ये करप्शन अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि सर्विस के लिए तो लेते हैं ना, चाहे वो कमीशन लें या रिश्वत लें, इसलिए कि वो आपका काम कर दें, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर दें। तो इस पर भी अब एक्ट लाए जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्ट लाए जा रहे हैं। कुछ राज्य लेकर के भी आए, कुछ राज्य लाने की तैयारी में भी हैं। फिर आप देखते हैं कि RTI आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया है। नो डाउट कि इसके बारे में भी आप शिकायतें सुनते होंगे, काम नहीं कर रहा ये भी सुनते होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि काम नहीं कर रहा, ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए RTI आ गया। तो इस तरीके से आपको नए जो रूप दिखाई दे रहे हैं, चाहे करप्शन के रूप दिखाई दें, उस पर परिवर्तन दिखाई दें, उस पर लगाए जाने वाले रोक दिखाई दें, तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए, तब जाकर के आप सिविल सर्विस के लायक अपने क्वेश्चन को बना सकेंगे। अदरवाइज जो पुरानी पद्धति को ही आप लेकर के चलते रहेंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। तो मित्रों, AIR न्यूज के बारे में इतना ही। अब मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, पेपर की कुछ क्लिपिंग्स हैं, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, उस पर मैं अभी आपसे चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, आप बड़े आराम से उन्हें देख करके समझ लेंगे। जहां तक करंट कंटेंट का सवाल है, करंट कंटेंट पर मैं आज एक टॉपिक डाला गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मित्रों, मैं कुछ समय तक आपको करंट कंटेंट की याद दिलाता रहूंगा, फिर जब वो आपकी आदत पड़ जाएगी तो फिर मैं अपने ये शब्द वापस ले लूंगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। बहुत से मित्रों ने मेल भेजे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत आभार। गोपाल तिवारी नई दिल्ली से, उन्होंने UPSC इंटरव्यू के काफी प्रश्न भेजे हैं जो पूछे गए थे किसी स्टूडेंट से। तो गोपाल, आपको बहुत बहुत मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, कुछ दोस्तों के मैं इसमें से नाम लेना चाहूंगा, वो है सोनी सिंह लखनऊ से, ब्रजेश मिश्र नासिक से, मनीष नागरलवार हैं, प्रीति कुमार हैं, गौरव हैं पूर्णिया से, राजेंद्र बिष्ट हैं टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड से, ज्ञानेंद्र चौधरी, उदय सिंह सीतापुर उत्तर प्रदेश से, तरुण गुप्ता शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, प्रशांत कुमार पटना से, वरुण पांडे इलाहाबाद से, अखिलेश जोयाल देहरादून से, रामू वर्मन नागांव असम से, और राम किंकर, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर हम लोग अलग अलग इश्यूज पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।